आज जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो है मिलिट्री हिस्ट्री। जी हाँ, आज हम आपके लिए मिलिट्री हिस्ट्री में बात करेंगे बैटल ऑफ मुगल्स पर। और हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट है। सबसे पहले हम उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पे रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र मोहन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
धन्यवाद।
तो सर, मैं चाहूंगी आप चर्चा को शुरू कीजिए प्लीज।
मैं कर्नल वीरेंद्र मोहन, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, और मैं आपको अगले करीब 40-45 मिनट में मुगल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया एंड इन पर्टिकुलर बैटल ऑफ मुगल आर्मी की जो लड़ाइयां थी उसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिससे कि आपको एक सामान्य तरीके से, जनरल तरीके से एक उसका एक आभास हो जाए, एक उसकी नॉलेज हो जाए एंड एक वर्केबल नॉलेज हो जाए। और आपने प्रीवियस लेसन्स में तो आपने देखा ही था कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बाबर, जो कि मुगल आर्मी का फर्स्ट इन्वेडर था हमारे इंडिया का, वो उसने मुगल आर्मी कंपोज की और उस तरह से अपने इक्विपमेंट चूज किए और उसने क्या वेपन्स होने चाहिए वो चूज किए। और आपने ये भी देखा होगा कि उस समय से मुगल आर्टिलरी का इंट्रोडक्शन बाबर के समय में हुआ था। तो बेसिकली इसका क्या कारण था कि वो एक आर्टिलरी आ जाएगी तो जब गोले इधर उधर गिरेंगे एक बैटल फील्ड में तो उससे ये पता नहीं रहता कि ये किस तरफ से आ रहे हैं, या पता लग भी गया कि किस तरफ से आ रहे हैं बट यू आर नॉट सर्टेन कि कहाँ गिरेगा। वो वही उसी जगह गिराता था जहां पर मोस्ट अनएक्सपेक्टेड होता था। तो इस लेसन में आपको मैं तीन इम्पॉर्टेंट जो एक लड़ाइयां थी, युद्ध थे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बैटल्स बोलते हैं, जो कि बाबर ने लड़ी थी एंड जो एक निर्णायक थी बाबर के और मुगल रूल के एक आगमन की निर्णायक थी हमारे भारतवर्ष में। उस समय इंडिया किस रूप में था वो तो एक रूप डिफरेंट था, लेकिन आज के इंडिया में जो हम लोग कहते हैं मुगल रूल कैसे आया, वो क्या बैटल्स थी, वो निर्णायक जो हुए उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट थी 1526 में, 1526 में, जो कि पानीपत में, जो कि आज एक अपने जो हरियाणा स्टेट है उसका एक फेमस टाउन है। जिसको इतना ज्ञान नहीं है तो उनको बता दूं मैं कि पानीपत ये टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए, हैंडलूम्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है आजकल, और दिल्ली से बहुत ही ज्यादा दूर नहीं रह गया ये। तो उस समय विक्ट्री एक्चुअली पानीपत की जो है ना इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इसमें जीत तो गया बाबर, लेकिन ही डिड नॉट हैव द लग्जरी टू सिट बैक, मतलब आराम से बैठना उसके बाद पॉसिबल नहीं था उनके लिए, क्योंकि जो पानीपत की बैटल में उन्होंने हराया और वो जो एक अधिकार जमाया वो केवल उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि भारत में, इंडिया में उस समय और भी बहुत ही पावरफुल राजा थे, जैसे कि राजा थे राणा सांगा। आप लोगों ने सुना ही होगा राणा सांगा कितने फेमस राजा थे, और वो मेवाड़ से बहुत बड़े राजा थे। तो इसलिए वो बाबर आराम से नहीं बैठ सकता था। आपको पता है कि बाबर जो है उसने दिल्ली को कब्जा किया और दिल्ली के कब्जा करने के बाद वो केवल अगले 4 साल तक ही जिंदा रह पाया और उसको अपना उसका जो कारभार है, उसकी जो एम्पायर है, वो उसके जो औलाद थी उसकी, उसके जो संतान थी, उसका बेटा था हुमायूं, तो उसके पास आई और फिर उसके बाद अकबर के पास गई एंड जो कि ये सारे मिल के एक के बाद एक वो मुगल एम्पायर को और मुगल पावर को कंसोलिडेट करते रहे और एक बहुत बड़ा भाग जो इंडिया का था उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया एंड दे वर रूलिंग वेरी कंफर्टेबली टिल दे वर एक्चुअली ड्रिवन अवे बाय ब्रिटिशर्स. तो इसमें आपको अगले 40 मिनट में मैं आपको जो बताऊंगा वो है वो पानीपत की बैटल में वो कैसे लड़ाई हुई और मुगल्स ने क्या टैक्टिक्स अपनाई और उसके बाद जो जो पावर स्ट्रगल हुई जो शुरू में मुगल एम्पायर मुगल डायनेस्टी के अर्ली ईयर्स में हुई उसके बारे में बताऊंगा. So let's have a general outlay of the first battle of Panipat. First battle of Panipat के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया जो ये पहली लड़ाई पानीपत की थी वह 1526 में ये लड़ी गई. उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे क्योंकि उस समय आपको याद होगा अगर आपको हिस्ट्री अभी याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ कि 1526 में दिल्ली में एक सल्तनत एम्पायर होती थी जो सुल्तानों की एम्पायर होती थी और उस समय जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी थे बहुत ही पावरफुल थे वो. तो बाबर की जो पहली लड़ाई हुई वो पानीपत में हुई वो 1526 में हुई और वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुई. एंड दिस वाज द सिग्निफिकेंस जो युद्ध का था या बैटल का था कि ये सबसे पहला ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें कि गन पाउडर के साथ एक युद्ध किया गया. बाबर के पास गन पाउडर था तो उसने गन पाउडर से युक्त गन पाउडर लेस्ड आर्सेनल एंड मिजाइल बॉम्ब एक्सेट्रा और गोलियां वो इस्तेमाल की. ये पानीपत में ही क्यों लड़ाई लड़ी गई? ये लड़ाई पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? क्योंकि उस समय जो इब्राहिम लोदी था जो कि लोदी डायनेस्टी का जो सुल्तनत का आखिरी राजा था वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी अथॉरिटी जो है वो पूरे भारत में कर ले. एंड इब्राहिम लोदी बहुत ही एक क्रूर किस्म का राजा था. क्रूर किस्म का राजा मतलब बहुत ही क्रूएल था और उसकी ये क्रूरता की वजह से जो जनता थी जनता उसको बहुत ही ज्यादा हेट करती थी उससे नफरत करती थी उससे चिढ़ती थी. तो जब ये हुआ तो जो उसके इब्राहिम लोदी के खुद के जो गवर्नर साहब थे दौलत खान लोदी थे उस समय और वो पंजाब के गवर्नर थे तो उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए और कुर्सी से हटाने के लिए उन्होंने बाबर को खुद निमंत्रण दिया. उनको एक इनविटेशन दिया कि आप आइए और ये सही समय है कि आप इंडिया में लड़ाई लड़िए और इंडिया को कब्जा करिए और इब्राहिम लोदी को यहाँ से खत्म करिए. जब बाबर को ऐसा एक ऑफर मिला तो बाबर तो खुश हो गया और उसने ये ऑफर स्वीकार कर लिया और इतनी तैयारी करके आया बाबर कि उसने बिल्कुल कुचल दिया. इब्राहिम लोदी ने जो उसको एक अपोजिशन देने की कोशिश की उसको बुरी तरह से कुचल दिया पानीपत में और इब्राहिम लोदी को मार दिया जान से मार दिया. क्योंकि एक बहुत ही लूज किस्म की एक वो राज चला रहा था. तो आपको ध्यान रखना है मैंने अभी तक बताया आपको कि बैटल ऑफ पानीपत का क्या महत्व था, और दौलत खान लोधी जो गवर्नर पंजाब का था लोधी डायनेस्टी में, उसने बाबर को क्यों जो है एक निमंत्रण दिया, एक इन्विटेशन दिया कि आप कि भारत में आकर के आप ये युद्ध करिए और इब्राहिम लोधी को किसी न किसी तरह से हटाइए। उस समय जो इस बैटल ऑफ पानीपत, वी विल कॉल इट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, हम इसे कहेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें मिलिट्री टैक्टिक्स क्या अपनाई गई, तो ये जानना भी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसमें जो हमारा इतिहास कहता है, तो इतिहास के अनुसार तकरीबन बाबर के पास 15,000 की फौज थी और इब्राहिम लोधी को इंडिया में ही था, उसके पास तकरीबन 1,00,000 आदमियों की फौज थी। इसका मतलब यह हुआ कि इब्राहिम लोधी की फोर्सेस न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर थी। जैसे कि आज अगर हम देखें चाइना और इंडिया में, तो चाइना के पास न्यूमेरिकली दे हैव लार्जर नंबर ऑफ ट्रूप्स इन देयर आर्मी एज कंपेयर टू इंडियन आर्मी, तो उस समय भी तकरीबन यही सिलसिला था कि इब्राहिम लोधी के पास 1,00,000, 1,00,000 छोटा मोटा फिगर उस समय नहीं था 1526 में, और बाबर केवल 15,000 लोगों के पास था। और बाबर की आर्मी में तुर्क थे, मंगोल थे, इरानियंस थे, अफगान थे, एंड एक जो सबसे बड़ा एक उसको एडवांटेज था, उसके पास एक बहुत बढ़िया कैवलरी थी और उसके पास तोपखाना के गनर्स थे विद गन पाउडर मैचलॉक और कैनन, जबकि लोधी के पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास केवल हाथी थे और एक बहुत ही ताकतवर कैवलरी और इन्फेंट्री थी। तो आप जानना चाहेंगे कि मैचलॉक क्या था, व्हाट इज ए मैचलॉक। सो मैचलॉक इज एक्चुअली एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जिससे कि हम गन पाउडर को इग्नाइट करते हैं। गन पाउडर जो होता है, एक जैसे थैली में रख लिया, अब थैली में रखा हुआ है तो वो केवल एक एक्सप्लोसिव है जिसको कि अगर आप माचिस से जलाएंगे तो वो नॉर्मल एक जैसे बुरादे के जगह लकड़ी के बुरादे की तरह जलने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने आपको उसमें धमाका लाना है तो उस धमाके को लाने के लिए इग्निशन चाहिए, उसको एक एक दूसरे तरह का फोर्स चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं इग्नाइटिंग फोर्स, वो चाहिए। तो एक ये मैकेनिज्म बाबर ने बना रखी थी और जो कि 15th century AD में उसने खूब जम के इस्तेमाल की। तो वही जो टेक्नोलॉजी थी वो ये बाबर लेकर के और आ गया अपना इंडिया में और उसको इस्तेमाल किया। अब मुख्यतया प्राइमरली एंड प्रिंसिपली जो लड़ाइयों में जीत होनी थी वो तो एक बेटर टैक्टिक्स की सहारे होनी थी, क्योंकि बाबर जी तो फौज जो है केवल 15,000 आदमियों की थी और लोधी के पास 1,00,000 आदमी थे। तो उसने क्या किया था बाबर ने, बाबर ने ایک نئی ٹیکٹکس یوز کی تھی جس کا نام تھا تلگھما اینڈ دی ارابا. تلگھما اور ارابا. تو ابھی یہ تلگھما کیا ہے؟ تلگھما میں جو مکھیہ اس کا ایک, ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ واٹ از دا مین آئیڈیا بیہائنڈ, تو تلگھما کا جو مین آئیڈیا تھا کہ اس کو, اس نے پوری آرمی کو اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ڈیوائڈ کر دینا اور ان کو فلینکس, فلینکس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاروں طرف لگا دینا. ارابا کیا ہوتا ہے؟ ارابا جو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بیل گاڑی ہوئی, گھوڑا گاڑی ہوئی, تو یہ اس نے کیا گیا, بڑی بڑی یہ بیل گاڑیاں وہ بنوائی اور اس نے انڈین ابراہیم لودھی کی فوج کو گمراہ کرنے کے لیے, کنفیوز کرنے کے لیے اس نے بہت سارے ارابا جو ہیں اس کے سامنے ایسے پلیس کروا دیے. تو یہ تلگھما اور ارابا ٹیکٹکس جو تھی اس پہ اس نے ریلائی کیا. بابر نے کیا کیا اور آگے چل کے اس نے ایک فارورڈ اور ریئر ڈویژن, دو ڈویژن بنائے اور ان کو فلینکس میں رکھا. اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس نیومیریکلی جو ہے اتنی آرمی نہیں ہے جتنی کہ ابراہیم لودھی کے پاس ہے, کیونکہ اس نے اپنی انٹیلیجنس آلریڈی گیدر کر لی تھی. اور گورنر آف پنجاب جو جنسی لودھی کا تھا اس نے ساری پول بھی کھول رکھی تھی, تو اس کا ایک ہی مدعا جو کہ سکسیسفل ہو سکتا تھا وہ یہی تھا کہ جو نہیں ہے وہ پروجیکٹ کر کے اور لڑائی کو جیتنا. تو فلینکس نے کیوں رکھا؟ فلینکس نے اس لیے رکھا کہ دشمن ابراہیم لودھی کی فوج جیسے جیسے آگے بڑھے گی اور اس کو ڈیپتھ میں لے جائیں گے, اور ڈیپتھ میں لے جا کر کے اور پھر گھیر لیں گے چاروں طرف سے. نو میٹر کہ ابراہیم لودھی کے بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن گھیر لیں گے, اور گھیر لیں گے اس کے بعد گن پاؤڈر استعمال کرتے ہوئے ان کے پاس اس سمے رائفلیں تھیں, گن پاؤڈر تھا, گولیاں تھیں, تو اس سے ان کو ابراہیم لودھی کی فوجوں کو بھون دیا جائے گا. تو یہ جو تلگھما اور ارابا ٹیکٹکس تھی اس سے کیا ہوا, ٹریپ ہوئے تو جو توپ خانہ تھا آج میں ریتھی بابر کی وہ کافی کامیاب حاصل ہوئی, کافی لیتھالٹی تھی اس میں, جو انہوں نے کینلز فائر کی وہ کرتے چلے گئے اور کوئی ڈر نہیں تھا کہ ان کو خود کو لگے گی, کیونکہ انہوں نے جو بلک کارٹ تھی, بیل گاڑیاں تھیں, وہ آگے لگا رکھی تھی. اینڈ نارملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سمے رسیاں استعمال کرتے تھے, یہاں رسیوں کی جگہ بلک کارٹ تھی, تو اس لیے بڑا پاسبل نہیں تھا کہ اس کو کراس کر کے ادھر آنا, اتنا آسان نہیں تھا. جو کینلز تھی اتنی ہیوی تھی اور فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کسی بھی ڈائریکشن میں تبدیلی ہو سکتی تھی اس کی, اور بہت ہی ایک کوئک ایکشن ہوتا تھا. اور اگر ان کو پتہ لگا کہ ابھی جو ہے ایک ابراہیم لودھی کی فوجیں بائیں سائڈ سے آ رہی ہیں, تو کینن کو ترنت ادھر گھما کر کے وہاں ادھر گولہ باری شروع کر دیتے تھے. और इसको इन्होंने रखा था मेंटलिस्ट। तो मेंटलिस्ट जो होती हैं वो बेसिकली इसलिए थी कि एक आसानी से कैनन्स को इधर से उधर घुमा दिया जाए और तुरंत तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो वो जो एक काबिलियत थी बाबर की आर्मी की, वो काबिलियत इब्राहिम लोदी की आर्मी में नहीं था। मेंटलिस्ट से एक और फायदा था कि उसको जैसे कैनन लगाया और उसके सामने हमने मेंटलिस्ट प्लेस कर दिया, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर आता है, कोई तीर आता है, कोई भाला आता है, कुछ भी आता है, तो उस वो मेंटलिस्ट रोक लेगा, तो उससे अपने आर्मी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, क्षति नहीं पहुंचेगी, लॉस नहीं होगा। तो बाबर की टैक्टिक्स पानीपत वाली जो थी उसने एक मिलिट्री ट्रेडिशंस के दो मिक्सिस को एक प्रोजेक्ट किया, दैट इज एक ओटोमान ट्रेडिशन एंड दूसरा था मंगोल तिमुरिड ट्रेडिशन, क्योंकि ओटोमान और मंगोल तिमुरिड ट्रेडिशन ये दोनों गन पाउडर बेस्ड वारफेयर ट्रेडिशन थे। एंड इसी में जो कार्ड ड्रैगन लाइन लगाई थी वो भी इट वॉज एज पर ओटोमान एंड मंगोल तिमुरिड ट्रेडिशन। दैट इज बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एक आर्टिफिशियल डिफेंसिव, यू आर क्रिएटिंग, आपके पास फौज नहीं है, यू कैन नॉट फाइट विद नंबर्स, सो यू टेक इट एंड आपने ये लगा दिया, एक बैरियर सा क्रिएट कर दिया जिससे कि एक आसानी जो होती है वो एक रन थ्रू मिलता है ऑपोजिट साइड को, वो रन थ्रू आपने एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया। ये तो था बाबर की टैक्टिक्स। वेयर एज जो इब्राहिम लोदी था वो एज यूजुअल वो हाथी और घोड़ों के ऊपर सवार फौज थी, उसके ऊपर ही रिलाई कर रहा था। और उसकी इन्फेंट्री अगर हम अगर देखें आज के समय में कि उसकी कितनी काबिलियत थी, तो इन्फेंट्री की काबिलियत इब्राहिम लोदी की उतनी नहीं थी। वो क्या करते थे कि जब ये घुड़सवार और हाथ सवार ये जब जा करके मार कूट कर देते थे, जीत लेते थे, तो ये इन्फेंट्री जा करके जो लास्ट मोमेंट वो होता था वो ऑपरेशन करके और फिजिकली ग्राउंड को ऑक्यूपाई कर देते।
सर हमारी चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हम चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
जी जरूर।
तो शिक्षार्थियों, श्रोताओं, बने रहें, सुने रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज़। अभी हम लेते हैं छोटा सा अल्पविराम, लौटते हैं अपनी चर्चा पर।
प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने,
हम अपना दीपक स्वयं बने।
जानिए प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो
मित्रों हम उठे और जागे
मंजिल आने की ध्वनि सुने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना
बनिए प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने
जवान
शिक्षा का अवसर एक समान
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
लॉग ऑन करें www.nius.ac.in
और प्राप्त करें माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के सभी विषयों की जानकारी
शिक्षा श्रोताओं पुनः स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अपने सीनियर सेकेंडरी मिलिट्री हिस्ट्री में और हमारा जो टॉपिक है वो है बैचलर ऑफ मुगल्स और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र मोहन जी। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ तो सर मैं चाहूंगी प्लीज चर्चा को शुरू कीजिए।
तो हमने अभी तक जो बात की थी वो टैक्टिक्स जो एडॉप्ट की गई बाबर ने अपनी बैटल फील्ड में पानीपत की और उस युद्ध को जीता और इब्राहिम लोदी क्यों हार गया जबकि उसके पास सुपीरियर आर्मी थी सो फार एज ए नंबर सरकमस्टेंस। तो हमने बात की मैं आपको बता रहा था कि इब्राहिम लोदी जो है डोमिनेंटली मुख्यतया वो हाथियों और घुड़सवारों के माध्यम से वो युद्ध जीतता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ जब गोले गिरते थे गोलों की आवाज बजती थी गंजना होती थी तो ये जानवर ये यूज टू नहीं थे, ये हाथी और घोड़े, तो ये क्या होता था कि ये बेदक जाते थे, बहुत बुरी तरह से बेदकते थे और ऐसे बेदकते थे कि वो रनिंग हेल्पर स्केल्टर एंड दे यूज टू बी आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ देयर राइडर्स, और इतना जो है वो बेकाबू इधर उधर दौड़ने शुरू कर देते थे, भागना शुरू कर देते थे आवाजों से, कि जो इब्राहिम लोदी की खुद की फौज थी वो भी काफी बुरी तरह से कुचल जाती थी। तो इसलिए ये भी एक उसका फेलियर का बहुत बड़ा कारण था। हजारों की संख्या में आप समझ लीजिए जवान मरे हैं, फोर्सेस मरी हैं, और जहां तक इतिहास कहता है इब्राहिम लोदी खुद भी जो कि उस बैटल फील्ड में खुद था, लड़ाई कर रहा था एंड ही वाज लीडिंग हिज ओन आर्मी, उसको विद इन 3 आवर्स बाबर की आर्मी ने मार दिया, विद इन 3 आवर्स। एंड ऐसा सोचना है, कहना है कि इब्राहिम लोदी के साथ तकरीबन उसके 20,000 लोग मारे गए। तो ये जब फर्स्ट बैटल पानीपत की बाबर जीत गया तो इसमें इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा सिंपल है, नतीजा ये हो गया कि बाबर ने मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर अपने इंडिया में स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। तो अब ये समझ लीजिए कि कहा लोदी डायनेस्टी सोच एक डिफरेंट, और ये कहा बाबर जो कि उज्बेकिस्तान का मुख्यतः, ये तो उज्बेकिस्तान का राजा था जिसने कि काबुल जीत लिया था 1500 समथिंग में, और उसके बाद ये आ गया इंडिया में। दौलत खान साहब ने जो है उसको बुला लिया और इब्राहिम लोदी को रगड़ दिया, क्योंकि ये अपनी प्रजा को खुश नहीं रख पा रहा था इब्राहिम लोदी। तो अभी तक हमने जो पढ़ाई की वो पढ़ाई की भाई तुलगुमा क्या है, अराबा क्या है, एंड जो बैटल ऑफ पानीपत का आउटकम क्या था वो हमने बताया। अब जब मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इट वाज नॉट ए क्विक वॉक, इतना आसान नहीं था कि आप आ गए और आपको इंडियन राजा जो है वो रहने देंगे, आपकी वीकनेस को देख के इंडियन राजा फिर आपको वापस खदेड़ना चाहेंगे और इब्राहिम लोदी की जो सल्तनत थी या लोदी डायनेस्टी को अपने काबू में लेना चाहेंगे। तो जब मुगल्स ने दिल्ली कैप्चर कर लिया तो राजपूत तो उस समय जो है ना नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट्स थे जिसके ऊपर रूल कर रहे थे। बाई द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी के शुरुआत तक उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी अंडर राणा संग्राम सिंह, जो कि राणा सांगा के नाम से बहुत ही फेमस है और मेवाड़ का राजा होता था, सदन राजस्थान में बहुत ही उसका दबदबा था। एंड वो उसने क्या किया, उसने कई सारे राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया अपने साथ और ये डिसाइड किया उन लोगों ने कि भाई ये जो फॉरेन रूलर आया है यहाँ पे बाबर, इसको हम यहां से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये सब हो गया, कई सारे राजपूत राजा इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपनी आर्मी जो है इकट्ठे करके और बाबर के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये कामयाब नहीं हुए, राजपूत जो हमारे इंडिया के थे कामयाब नहीं हुए और ये जो एक यूनाइटेड राजकीय पॉलिटी बनाई थी इन्होंने, ये बहुत ही जल्दी जो है, बहुत ही जल्दी एक हवा की तरीके से एक तरफ से आई या दूसरी तरफ से निकल गई। और उस समय की जो अगर राजस्थान की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ये पता लग जाता है कि राजपूत का वायलेंट बिहेवियर क्या था। तो हमें राणा सांगा के बारे में ये थोड़ा और भी जानकारी ले लेनी चाहिए। So let us see about Rana Sangha. And आपको यही बता दूं कि Rana Sangha ने तीन युद्ध लड़े बाबर के साथ में, और उसके बाद नतीजा क्या हुआ मैंने आपको बता ही दिया। Rana Sangha 12 अप्रैल 1484 को पैदा हुए थे और 17 मार्च 1527 में खत्म हो गए थे। उनका नाम मैंने आपको बताया, ही वॉज नोन बाय द नेम महाराणा संग्राम सिंह, अ वेरी बिग नेम कैरिंग लॉट ऑफ वेट अलोंग साइड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट he was known by the term Rana Sangha. Iski naam se jo log kaap jaate the. He fought with his own brothers for gaining the power, and after he assumed the throne, jab usko gaddi mil gayi, usne phir शुरू किया कंसोलिडेशन ऑफ पावर। उसको जितनी भी पावर चाहिए थी, उसको आसपास जहां जहां वीकर राजा लोग थे तो उनकी सबको जो है उनको अपने कंट्रोल में कर लेना। तो ये उसने बड़ा ही इफेक्टिव तरीके से किया था, और तभी उस इतना ज्यादा जो है वो बड़ा राजा था। उसने सबसे पहले जो अटैक किया था वो मालवा के ऊपर किया था, जो कि सुल्तान महमूद खिलजी और राजपूत वजीर उनके और एक मदनी गांव होते थे उनके बीच में काफी डिफरेंसेस थे, उसकी वजह से वो काफी वीक पोजीशन में था। जब उन्होंने मालवा की बैटल जीत ली तो उससे उनकी पावर प्रदर्शन और भी ज्यादा हो गया और लोग डरने लगे। मालवा जीतने के बाद उनका ध्यान गया उत्तरी पूर्वी राजस्थान की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ, जो कि एली थे लोधी वो रूल कर रहे थे। उन्होंने उसको इन्वेट किया और उसका नतीजा ये था कि वो काफी एरिया उसको अपने काबू में किया, और जो एक रणथंभौर का एक किला था, बहुत फेमस किला है अगर आप लोगों ने देखा है, तो उसको भी उसने हथिया लिया। लोधी ने वापस उसको रिटेलिएट किया और मेवाड़ को इन्वेट किया, लेकिन सांगा काफी पावरफुल था और उसकी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टक्कर दिया लोधी को और उनको हरा दिया। तो दिस वाज बैटल ऑफ खटोली विच वाज अगेंस्ट इब्राहिम लोधी नेक्स्ट, एंड इट वाज अगेन ए बिग सक्सेस। बहुत बड़ी एक विजय थी राजपूत के लिए। आगे आने वाले उसमें जब महाराणा जो है और लड़ाई लड़ा तो उसका एक हाथ ही कट गया एंड वो पूरे जीवन के लिए एक अपंग हो गया. ही बिकेम लेम फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड दिस एक्चुअली डाइल्यूटेड हिज एंटायर फाइटिंग स्पिरिट बिकॉज ही कुड नॉट डू व्हाट ही थॉट ऑफ डूइंग. दिमाग में जो चीज थी उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा था करने के लिए. देयरफॉर ही लॉस्ट द फाइटिंग स्पिरिट and he was highly depressed. So uska morale down ho gaya. Lekin ke baad bhi dekhiye usne ek ladai Ibrahim Lodi ke sath Dholpur mein ladi. Dholpur aap log sab jante honge Agra se thodi dur ke baad mein hai. And us halat mein bhi usne Rana Sanga ने लोदी को फिर से हराया और जो लॉस्ट टेरिटरीज थी राजस्थान की वो वापस से रिगेन कर ली. तो अब मैं आपको बताता हूँ बैटल ऑफ खानवा के बारे में. मैंने आपको बताया है कि बैटल ऑफ खानवा क्या था और बता ही दिया है. तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ. चंदेरी बैटल ऑफ चंदेरी था एंड उसके बाद इसमें भी सभी में टैक्टिक्स वही रही और स्ट्रेटजिकली प्लानिंग किया. बहुत ही क्लेवर तरीके से बाबर ने अपने आदमियों को अपने हथियारों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और जितने भी चंदेरी के डिफेंडर्स थे उनको सबको जो है भगा करके या पकड़ करके और चंदेरी में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और उसने एक जौहर किया. फिर उसके बाद उन्होंने उसकी उनकी औरतों को मारा और उसका जौहर किया एंड उससे उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा बाबर को सेटबैक था क्योंकि बाबर जो है क्विकली जो है वो नहीं सक्सीड हुआ फॉल ऑफ टाउन में. मतलब वो चंदेरी के टाउन को उसने बहुत ही जल्दी से कब्जा नहीं कर पाया एंड क्योंकि वो आगे भी खुद भी
सर मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगी एक्चुअली स्टूडियो की सही बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है कि हम इस चर्चा को आगे ले जाएं. तो मैं चाहूंगी सर जाते जाते आप कुछ हमें सम अप करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में.
जी
जी सर.
तो मेरे लिसनर्स मैंने आपको एक छोटे तरीके से आपको मुगल आर्मी की बैटल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है और उसको एक्सप्लेन करके बताया है और उसमें अपोजिंग फोर्सेस क्या थी बैटल ऑफ खानवा में और क्या क्या तरीके से जो बाबर ने पहले फाउंडेशन ले डाउन किया फिर उसके बाद जो चैलेंजेस मुगल आर्मी में आए इब्राहिम लोदी को कैसे जो है ना वो सक्सेस नहीं मिली कितने अटेम्प्ट करने के बाद भी और फिर इस तरीके से टैक्टिक्स भी बताया मैंने आपको. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल हैव हर्ड इट वेरी पेशेंटली एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को आज के इस लेसन से एक जनरल आइडिया हो जाएगा.
रियली थैंक्स अ लॉट सर. आपने हमें बैटल ऑफ मुगल के बारे में अच्छे से सारी चीजों को समझाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
थैंक यू.